بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی بات چیت جو ہے اس کا ٹاپک ہے تھاٹ مینجمنٹ. تھاٹ مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں سب سے امپورٹنس تھاٹ مینجمنٹ کی ہے. تھاٹ مینجمنٹ ایک سائنس ہے, سائنس آف تھاٹ مینجمنٹ. اس کو آپ آرٹ آف تھاٹ مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آرٹ کا ورڈ جو ہے اس میں تھوڑا ہلکا لگتا ہے مجھے, اتنا بھاری ورکم نہیں ہے جتنا کہ تھاٹ مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے. تو کس کو کہنا چاہیے سائنس آف تھاٹ مینجمنٹ؟ پوری پوری لائف جو ہے اسی سے کور ہوتی ہے. تھاٹ مینجمنٹ میں فیلئر لائف میں فیلئر ہے. تھاٹ مینجمنٹ میں سکسیس لائف میں سکسیس ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اس لیے کہ آدمی کنٹرول ہوتا ہے اپنے مائنڈ سے. آدمی کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہیں, اور مائنڈ تھاٹ سے کنٹرول ہوتا ہے. جیسے تھاٹ مائنڈ لے گا, کیونکہ تھاٹ تو آتے رہتے ہیں. اب مائنڈ کو چاہیے کہ تھاٹ کو مینج کرے, تھاٹ کو انالیسس کرے. جیسے ابھی ہارن بجا زور سے, ایک گاڑی چلی گئی ہارن بجاتے ہوئے, یہ بہت ہی انسیولائزڈ میتھڈ ہے. یہ ڈیولپ کنٹریز میں کوئی ہارن نہیں بجاتا. اب میرا مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا تو اب مجھے مینج کرنا پڑا اس ہارن کو. تو اس کے لیے ہم نے کیا فارمولا نکالا؟ وہ فارمولا ہے کہ آرٹسٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل. یہ انگلش سیئنگ ہے, آرٹسٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل. یہ دیکھو زندگی میں کہ واٹ از پاسبل واٹ از امپاسبل. اگر ہم پاسبل اور امپاسبل میں ڈفرنس نہ جانیں تو یہی ہوگا کہ ہم امپاسبل کے پیچھے دوڑیں گے اور لاسٹ میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سائنس آف تھاٹ مینجمنٹ. اب کل میرے پاس ٹیلی فون آیا ہے ایک آدمی کا, اسی سے میں شروع کرتا ہوں. تو ٹیلی فون پر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو بہت ہی سوچنے والی بات ہے. وہ آج سے نہیں, ایک دم بگننگ ہی سے ہماری مشین کو جانتے ہیں, اور بچوں 25 سال سے تو ایکٹیولی جانتے ہیں اس کو. مطلب ہماری ٹائپنگ پڑھتے رہے, ہم سے بار بار اس سے میٹنگ ہوتی رہی ہے, لیکن وہ اس کام میں پریکٹیکل تو لگے نہیں. حالانکہ انہوں نے بہت زبردست قسم کا ڈریم دیکھا تھا. یہاں انہوں نے بتایا تھا ایک بار, شاید آپ نے سنا بھی ہو. انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک نون روڈ ہے, وہاں جانتے ہیں وہ روڈ کو, یعنی وہ تو فرضی جگہ نہیں ہے, وہ ایک ویل نون جگہ ہے, سیدھی روڈ ایک ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس روڈ پر وہ ہیں, اس کے ایک اینڈ میں, اور یہاں پہ ایک بہت بڑا سرپنٹ نکلا, بہت بڑا سانپ. یہ بھاگے, اب روڈ پر وہ دوڑ رہے ہیں, پیچھے پیچھے وہ سرپنٹ دوڑ رہا ہے, بہت ہی بڑا سانپ ہے وہ. تو سانپ دوڑا رہا یہ بھاگ رہے ہیں, سانپ دوڑا رہا یہ بھاگ رہے ہیں. یہاں تک کہ کافی دیر تک دوڑتے ہوتے وہ تھک گئے, تو اچانک دیکھتے ہیں کہ میں روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. جب مجھ کو دیکھا انہوں نے تو وہ کھڑے ہو گئے, اور سانپ بھی رک گیا. جیسے میرے میرے پاس آتے ہی سانپ رک گیا, تو وہ بھی کھڑے ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں مجھ سے, دیکھیے تب سانپ دوڑا رہا ہے, کیا کروں؟ بہت ہی پریشان ہے, ہانپ رہے ہیں. تو میں اسے کہتا ہوں کہ دعوت کیجیے. دعوت کیجیے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈو دعوا یا ڈو دعوا ورک. انہوں نے بتایا کہ اس ڈریم کو انہوں نے یعنی پتا نہیں 10 بار 10 بار 20 بار کتنی بار دیکھا, سیم ڈریم ریپیٹ ہوتا رہا, لیکن ان کے اندر یعنی پریکٹیکل طور پر دعوت کا کام کریں اس کی اسپرٹ نہیں پیدا ہوئی. یہاں تک کہ 20 سال بیت گئے, اس خواب کو دیکھے ہوئے 20 سال ہو گئے. جب ان کے والد صاحب زندہ تھے تب دیکھا تھا انہوں نے. تو کل انہوں نے بتایا, کل سمجھ میں آیا کہ کیا اس کا راز تک کیا تھا کہ اتنے بڑے ڈریم کے بعد بھی انہوں نے دعوت کام کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ دعوت کیا ہے, دعوت تو کچھ بولنا ہے, کچھ کہنا ہے. تو میرے مائنڈ میں بھرا ہوا تھا سوشل ورک کی امپورٹنس, کہ سوشل ورک میں ہم کسی کچھ سبسٹینشیل طور پر کچھ دیتے ہیں, اس کو ہم نے ایجوکیشن دیا یا اس کو پیسہ دیا یا اس کو میڈیکل ایڈ فراہم کیا. تو سوشل ورک جو ہے اس میں ہم سبسٹینشیل طور پر آدمی کو دیتے ہیں کچھ. اور دعوی میں کیا آتا ہے, کچھ بات بول دی, اسے سن لیا بس. تو یعنی آپ 20 سال سے ان کے لیے مدر ٹریسا جو ماڈل بنی ہوئی تھی, ماڈل مدر ٹریسا, مدر ٹریسا جو وہی کام کر رہی ہے اور ہم جو ہے کوئی بہت امپورٹنٹ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ تھا آپسیشن ان کا جس کو لے کر وہ دعوت میں نہ لگ سکے. اب آج کل تو 24 گھنٹے دعوت ہی مل کے رہتے ہیں وہ 24 گھنٹے. تو یہ چیز کیسے آیا ان میں, یہ ہے تھاٹ مینجمنٹ. ہماری جو میگزین ہے جو منتھلی نکلتی ہے اس میں بہت زیادہ بات رہتی ہے آخرت کی, ڈے آف ججمنٹ کی, اکاؤنٹبلٹی کی, ہیلتھ کی, پیراڈائز کی بات بہت زیادہ رہتی ہے. تو اس کو پڑھتے تھے, وہ پڑھتے پڑھتے ان پر یہ بات کھلی کہ مدر ٹریسا یا ان کی جیسا کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کسی انسان کو ایک پارشل سنس میں مدد دے رہے ہیں. اور دا ورک تو ایک ایٹرنل سنس میں آدمی کو مدد کرنا ہے, یعنی ان کا جو کام ہے سوشل ورک کام جو کرتے ہیں, تو وہ 10-20 سال کے کسی کام نے پیسہ دے دیا جو 10-20 سال کام آیا, کسی کام نے ایجوکیشن دلالی دے دی جس سے اس کو جاب مل گیا 10-20 سال کے لیے, کسی کو آپ نے میڈیکل ہیلتھ میڈیکل ایڈ فراہم کر دی 10-20 سال کی اس کی ہیلتھ اچھی ہو گئی. تو کیا ہے, انسان تو پھر بھی بڑھے گا, انسان تو 100 سال سے بھی کم میں مر جاتا ہے, کوئی اٹرنلی زندہ تو رہتا نہیں. تو ہم اس کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ لائف اسپین ہمارا بہت بڑا ہے, لائف اسپین ہمارا ہے وہ بہت بڑا ہے. پری ڈیتھ پیریڈ میں تھوڑا سا ہے 50-60-70 سال, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے, بلین ٹریلین سال سب پڑی ہوئی ہے. تو ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ لائف جسٹ لائک وہ ہے آئس برگ, آئس برگ کا صرف ٹپ تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے اور سارا اس کا پورا پہاڑ جیسا اس کا باڈی جو ہے سب پانی میں رہتا ہے. آئس برگ کیا ہے؟ آئس برگ ہے برف کا ماؤنٹین, برف کا پہاڑ جو اوشن میں ہوتا ہے. تو پورا پورا پہاڑ جو ہے نیچے رہتا ہے پانی میں چھپا ہوا اور صرف اس کا اوپر تھوڑا ٹپ دکھائی دیتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ٹپ ہے, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ وہ پورا کا پورا اندر جو ہے آئس برگ وہ ہے. خیر اس طرح کے پڑھتے پڑھتے ان کی سمجھ میں آیا کہ سوشل ورک بہت ہی پارشل سینس پہ انسان کی مدد کرنا ہے, اور داؤ ورک جو ہے وہ اٹرنل سینس میں انسان کی مدد کرنا ہے. کیونکہ ایک آدمی کو اگر ہم نے ایسا کیا کہ اس ٹروتھ کو جان لیا, اس نے زندگی کی ریئلٹی کو جان لیا, اس نے اپنی لائف اس نے گاڈ اورینٹڈ بنا لی, پیراڈائز کا راستہ چل پڑا, تو اٹرنل سینس میں گیا, اس کو سکسس مل گئی. تو سوشل ورک کے مقابلے میں دعوی ورک نے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑا ہے, بڑا کام ہے. اب دیکھیے, یہ ہے تھاٹ مینجمنٹ. پہلے وہ اس طرح سوچتے تھے کہ دعوی ورک کچھ کہنا سننا ہے بس زبان سے, اور سوشل ورک جو ہے سبسٹینشیل طور پر کچھ دینا ہے, کچھ سبسٹینشیل چیز دینا انسان کو, اس طرح سوچ رہے تھے. پھر وہ سوچ کو بدلا, اس طرح سوچا کہ سوشل ورک میں آپ ایک بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے کسی کو کچھ ہیلپ دے دیتے ہیں, دعوی ورک میں ہم اس کو انٹرنل سینس میں کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھاٹ مینجمنٹ, کہ کوئی تھاٹ آیا مائنڈ میں آپ اس کو مینج کرنا جانے, صحیح ڈھنگ پر انالیسس کرنا جانے. یہ تھاٹ مینجمنٹ جو ہے ہر دن آدمی کے سامنے آتا رہتا ہے. یہ دیکھیے سامنے جو ہے, ہمارے سامنے جو ہے دو سبزی والے تھے, دو سبزی والے, ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا. تو ہندو سبزی والا تو ہم نے دیکھا کہ 20 برس سے وہ اس کی دکان چل رہی ہے, بیچ رہا ہے وہ, اور جو مسلمان سبزی والا تھا اس کی 6 مہینے میں اس کی دکان ٹوٹ گئی. اب یہاں بھی دیکھیں تھاٹ مینجمنٹ ہے, وہ کیسے, یہاں پارک میں بچے آتے ہیں, دکان کے سامنے جو پارک ہے, بچے دوڑتے ہیں پارک کے لان کو خراب کرتے ہیں, پھول توڑتے ہیں. اب وہ ہندو سبزی والا بھی دیکھتا تھا, مسلمان سبزی والا بھی دیکھتا تھا اس کو. تو ہندو سبزی والا کا مائنڈ کیا تھا, ابھی اپنے کو کیا لینا دینا, کہ وہ سبزی بچے اگر لان کو خراب کر رہے ہیں, پارک کو خراب کر رہے ہیں, تو وہ مالی جانے, یہ مالی کا کام ہے, مالی دھوکا ان لوگوں کو, ہم سے کیا مطلب. اچھا مسلمان جو تھے اس کو مینج نہیں کر سکے اس تھاٹ کو, کہ دیکھا جب بچے گڑبڑ کر رہے ہیں تو غصہ ہو کے دوڑے, لوگ لڑکے کو مار دیا. اب وہ لڑکا ایسی کالنی کا تھا, اب اس کے ماں باپ آ گئے اور بہت سارے لوگ آ گئے, اور شور مچایا, اتنا شور مچایا کہ وہ بےچارا سبزی لے کے بھاگ گیا. اب دیکھیے ایک تھاٹ آیا دونوں کے مائنڈ میں, ہندو سبزی والے کے مائنڈ میں, مسلمان سبزی والے کے مائنڈ میں. تو ہندو سبزی والے نے کیا کیا, اس کو بارش کیا اس تھاٹ کو, تو اس برے رزلٹ سے بچ گیا وہ. مسلمان سبزی والے جو تھا اس کو وہ مینج نہیں کر سکا, تو اس کی دکانیں ٹوٹ گئی. پوری لائف میں ایسے ہوتا ہے, یہاں تک کہ بڑے بڑے انٹرنیشنل نیچر اس میں بھی ہوتا ہے. جسے بھی کل میں نے کہا تھا پارٹنرشپ کے بارے میں, تو انڈیویجل سے لے کر نیشنل افیئرس تک, یہاں تک کہ انٹرنیشنل افیئرس تک, ہر جگہ یہی ہے کہ آدمی کو اپنے مائنڈ میں جو بات آتی ہے اس کو مینج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ پہلے بات آتی ہے مائنڈ میں, پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایکشن میں. تو اگر مائنڈ کے لیول پہ ہی پر مینج کر لیا جائے تو وہ ایکشن میں کیوں ٹرانسلیٹ ہوگی, مہم ختم ہو جائے گی. اب جیسے میں ایک قصہ بتاتا ہوں انڈیویجل لیول پر, یہ جو جی ڈی برلا جو تھے انڈیا کے بہت بڑے انڈسٹریسٹ, تو یہ کانگریس میں شامل تھے, یعنی فریڈم موومنٹ میں شامل تھے یہ 47 سے پہلے, گاندھی کے ساتھیوں میں कहा जाता था उनको। देखिए जब यह हुआ कि इंडिया को फ्री होना है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज फ्रीडम दे देगा, तो उसका तरीका यह किया गया था कि जो वायसराय था इंडिया का उस लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन रात को 12:01 पर इसको अनाउंस करेगा 15 अगस्त की रात को 12:01 पर। तो उस वक्त टीवी नहीं होता था, उस वक्त रेडियो होता था, तो रेडियो पर वो बोलेगा कि टुडे इंडिया इज फ्री। ब्रिटिश वायसराय जो उस वक्त रूल कर रहा था इंडिया पर लॉर्ड माउंटबेटन, वो 12:01 पर रात को कहेगा रेडियो पर कि टुडे इंडिया इज फ्री, तो बस इंडिया आजाद हो जाएगा। तो उस दिन यानी 15 अगस्त की रात को 15 अगस्त की शाम को सारे लीडर जो थे वो बिरला हाउस में बैठे हुए थे। बिरला हाउस दिल्ली में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो पहले कांग्रेस के लोग वहीं मिला करते थे। तो लोग ये सारे लीडर कांग्रेस के बैठे हुए थे, गांधी नहीं थे क्योंकि गांधी उस वक्त वहां थे, ईस्ट पाकिस्तान जो कायदा था वहां थे, इंडिया में थे ही नहीं वो। तो जो कहते हैं नोआखली, पाकिस्तान को जब मिला था ये हिस्सा तो पहले उसको कहते ईस्ट पाकिस्तान, अब उसका नाम बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एक टाउन है नोआखली, वहां पर थे उस वक्त वो गांधी। तो वहां पर क्यों गए थे वो उसका अलग, उसकी अलग स्टोरी है। तो बहरहाल कांग्रेस लीडर इकट्ठा थे, तो बिरला भी वहां मौजूद था। तो जब घड़ी में टाइम हुआ 8 बजे यानी 8 PM तो उठ गया वो, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं 12 बजने का, 12:01 पर ये सुनने का कि इंडिया टुडे इंडिया इज फ्री। लेकिन बिरला जो खुद भी फ्रीडम मूवमेंट में शरीक था वो खड़ा हो गया अपनी घड़ी देख करके। तो लोगों ने कहा कि भाई इतना हिस्टोरिकल टाइम आप कहाँ जाए, अभी तो हमें सुनना है बैठना है यहाँ पर। तो बिरला ने कहा कि मैं 8:30 पर बेड पर चला जाता हूँ, ये मेरी आदत है सवेरे सवेरे सोना सवेरे उठना, मेरा तरीका है सवेरे सोना सवेरे उठना, 8:30 पर बेड पर चला जाता हूँ। अब 8 बज चुके हैं, मेरा टाइम हो चुका है, तो मैं अपने टाइम पर 8:30 पर बेड में पहुंचना चाहता हूँ अपने बेडरूम में। और जहां तक अनाउंसमेंट की बात है तो कल पेपर पर आ जाएगा जो अनाउंसमेंट आज करेगा वायसराय 12:01 पर, तो कल के पेपर में आ जाएगा वो, मैं पेपर पढ़ लूंगा। यह है थॉट मैनेजमेंट। लोग जो है इम्पेशेंटली बैठे थे सुनने के लिए कि भी वायसराय यह अनाउंस करे, तो जाहिर है कि बिरला के माइंड में भी होगा कि सुनूं मैं, ये सुनने का शौक तो उसको भी होगा। लेकिन उसने अपने थॉट को मैनेज किया कि अगर मैं ये करूं कि मैं यहां बैठा रहूं और 12 बजे तक बैठा रहूं, 12 बजे सुनूं उसको, तो मेरा आज की रात डिस्टर्ब हो जाएगी, कल सुबह सवेरे नहीं उठ पाऊंगा मैं, तो एक दिन मेरा खराब हो जाएगा, मेरा एक दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि देर में सोऊंगा तो जाहिर है कि देर में उठूंगा, एक दिन खराब मेरा। तो अगर से उसके भी माइंड में शौक था सुनने का वायसराय की आवाज, लेकिन उसने अपने इस थॉट को मैनेज किया इस सोच करके कि चलो फिर इस वक्त रेडियो पर नहीं सुनेंगे अगर हम, तो क्या फर्क पड़ा, कल सुबह को अखबार पढ़ लेंगे, कल पेपर में आ जाएगा। यह है थॉट मैनेजमेंट। जैसे अब आज की एग्जांपल लीजिए, जो है बेड पर पड़ी हुई थी, हैं? क्या है कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं को लेकर के बेड पर पड़ी हुई थी। अब आज के इस क्लास में वो ना आती, इतनी इम्पोर्टेंट क्लास आज की है कि हम हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा क्लास नहीं हुई जब किसी बताया गया हो थॉट मैनेजमेंट। पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा क्लास एक है जहां आपको हम एक सुपर फॉर्मूला जिंदगी को बता रहे हैं। पूरी हिस्ट्री खाली है ऐसी किसी क्लास से। तो उसने कैसे मैनेज किया उसका हमने फॉर्मूला बताया जिसको मान लिया उसने कि एक्सक्यूज दो किस्म के होते हैं। There are two kind of excuses. एक है नॉर्मल एक्सक्यूज, एक है क्रिपलिंग एक्सक्यूज। तो हमने बताया कि नॉर्मल एक्सक्यूज तो होते ही होते हैं, हर दिन होते हैं। इन लाइफ इज फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, सो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम एक्सक्यूजेस। तो अगर आदमी की हैबिट ये हो कि कोई भी एक्सक्यूज आया उसको ले लिया, कोई भी एक्सक्यूज ले लिया, तो जिंदगी उसकी इसी में बीतेगी, मिस्टर एक्सक्यूज बन जाएगा वो। मिस्टर एक्सक्यूज और मिस एक्सक्यूज, सुबह शाम एक्सक्यूज है, उसी पर रहेगा, उसी पर रहेगा। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, नॉर्मल एक्सक्यूज एंड क्रिपलिंग एक्सक्यूज। तो नॉर्मल एक्सक्यूज है वो तो रहेगा रहेगा, आज भी, दोपहर भी, शाम भी, सुबह भी, कल भी, परसों भी। तो क्या आप अपनी जिंदगी को एक्सक्यूज के हवाले कर देंगे? ऐसा कर सकते हैं कि आप एक्सक्यूज में जिए? नहीं, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, नर्व एक्सक्यूज को अवॉइड करना पड़ेगा, क्रिपलिंग एक्सक्यूज को सिर्फ लेना पड़ेगा। एंड यू हैव टू अवॉइड नॉर्मल एक्सक्यूज एंड यूज ओनली द क्रिपलिंग एक्सक्यूज जो बहुत ही सेल्डम कभी जिंदगी में पेश आते हैं। क्रिपलिंग एक्सक्यूज दिल ऐसे होते जिंदगी में एक दो बार कभी हो जाते हैं। ये ए फार्मूला हमने बताया तो उसको उसे मान लिया। अगर ना आती तो इस हिस्टोरिकल क्लास से वो मरूम रहती। थॉट मैनेजमेंट जो हम इस क्लास ले रहे हैं उसे वो बेखबर रहती। तो थॉट मैनेजमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा आइटम है कि आदमी डिफ्रेंशिएट करना जाने क्रिपलिंग एक्सक्यूज और नॉर्मल एक्सक्यूज में। और जब भी कोई एक्सक्यूज आता है, जब भी कहा सुबह शाम एक्सक्यूज आते रहते हैं, तो उसको मैनेज करे, ये सोच करे कि ये तो नॉर्मल एक्सक्यूज है, ये तो रहे रहेगा, सर दर्द है तो वो भी सर दर्द रहेगा, सुस्ती है वो भी सुस्ती भी रहेगी, कुछ बोर्डम है तो वो बोर्डम भी रहेगा, तो थोड़ा अगर टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर भी रहेगा, सोने की जी चाहता है तो वो भी रहेगा। ये सारे एक्सक्यूज नॉर्मल एक्सक्यूज है, चाय नहीं पिए तो वो भी रहेगा। तो यही तो होते हैं एक्सक्यूज। एक बार तो हम जा रहे थे कहीं, एक आदमी जो है वो रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सके, ट्रेन उनकी छूट गई, हम लोग गए वो रह गए। वो तो क्या था कि चाय बनाएगी उनकी, तो उसमें शक्कर नहीं थी, घर में शक्कर नहीं थी। आदमी दौड़ा जा, 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 शक्कर ले आओ। अब दौड़ा गया बाल्टी में शक्कर लाने के लिए, अब उसको रास्ते में कहीं टकरा गया, बेचारा बहुत देर पहुंचा, बहुत देर हो गई कि जब चले तो ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पर क्या था करना उनको कि चलो बगैर शक्कर की पी लेते हैं, ये था वहां पर थॉट मैनेजमेंट। तो उनके माइंड में आया कि चाय तो बगैर शक्कर की है, क्या करें। तो उनको सोचना चाहिए था कि इस वक्त जो है इमरजेंसी है, हमें ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन किसी की रुकती नहीं है, आगे चली जाएगी। तो मुझे आज कम से कम ये करना चाहिए कि मैं बगैर शक्कर के चाय पीऊं भागूं। ये नहीं किया उन्होंने, नहीं किया तो ट्रेन छूट गई, उन्हें पहुंच सके वो। तो हर सुबह हर शाम हर रात हर दिन एक्सक्यूज आते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्सक्यूज मैनेजमेंट, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्सक्यूज मैनेजमेंट। ये वाइज इसका हल है और कोई दूसरा हल नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। सुपर अचीवर्स एक बुक है, छपी है वो, आप सुपर अचीवर्स पढ़िए, तो बिटवीन द लाइन उसमें जो भी मिलती है वो यही है। उसका ऑथर जो था वो इसको जानता नहीं था इस बात को, मैं कह रहा हूं आपको कि थॉट मैनेजमेंट कंपोर्टेंस होता था उसका ऑथर, तो इस तरह लिखा हुआ है। देखिए किताबों को पढ़ करके आप ये एक्सपेक्ट करें कि ऑथर सब कुछ दे देगा उसमें, इम्पॉसिबल है। ऑथर इतना ज्यादा हर चीज को नहीं जानता है कि हर बात दे दे उसमें, आपको उसमें से निकालना पड़ता है। तो सुपर अचीवर किताब में ऐसा नहीं कि उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने निकाला ये कि जितने भी सुपर अचीवर्स थे वो वही थे जो नॉर्मल एक्सक्यूज को कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया उन्होंने। उस बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बिटवीन द लाइन ये बात उसमें मौजूद है कि सुपर अचीवर क्यों बने, वो इसलिए बने कि नॉर्मल एक्सक्यूज को कभी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसको अवॉइड करते रहे अवॉइड करते रहे अवॉइड करते रहे। अब देखिए अभी जो एक लीडर का उनके भाई ने मार डाला, वो भी आ सके उसको नहीं पता था इस बात का कि वो एक स्कूल टीचर का लड़का था, मतलब गरीब फैमिली पुअर फैमिली में पैदा हुआ, फिर पॉलिटिक्स में आ गया वो, और ड्राइव करते करते वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, यहाँ तक के 10,000 करोड़ का एसेट उसके पास हो गया। एक पुअर टीचर का बेटा, उसके पास 10,000 करोड़ का एसेट हो गया। बॉम्बे में 15 स्टोरी की बिल्डिंग उसके पास हो गई, दिल्ली में बहुत बड़ा स्प्रॉलिंग बैंगलोर उसके पास है, वगैरह वगैरह, प्लस फेम ये सब। अब जो भाई था उसका, उसको भी उससे बहुत फायदा पहुंचता था, उसके नाम पर उसके काम बन जाते थे, कहीं ऑफिस में गया घर उसका काम होता था। लेकिन अब वो चाहता था कि उसके पास 15 स्टोरी की बिल्डिंग है तो मेरे पास ही हो, उसके पास 10,000 करोड़ है तो मेरे पास 10,000 करोड़ का सेट हो, उसकी शान है तो वही शान मुझे ही मिले। उसको सोचा जैसे की थी, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो थॉट आते थे उसके माइंड में, यानी इस किस्म के थॉट, कि वो चाहता था इक्वलिटी अपने और अपने भाई के बीच में, जो इक्वलिटी तुम अपने खुद से हाजिर करो, भाई को तुमको देगा। भाई ऐसा नहीं कर सकता कि अपने 10,000 असेट को बांट करके 5,000 तुमको दे दे, 10,000 करोड़ असेट का 5,000 करोड़ तुमको दे दे। जिंदगी में ऐसा नहीं होता कभी भी, हर आदमी को खुद अपनी डेस्टिनी बनानी पड़ती है, आज हर आदमी खुद कमाना पड़ता है, हर आदमी को खुद अपना अपनी दुनिया तामीर करनी पड़ती है। तो अगर जो उसको बहुत फायदा था, लेकिन उसके एम्बिशन से कम था, उसको पैसा भी काफी दे चुका था, वो लाखों रुपया पैसा भी दिया था, उसको घर भी दिलवाया था और कार भी दिलवाई थी, ऑफिस में उसका काम बनता था उसके नाम पर, तो बहुत सारे फायदे उसको मिल रहे थे, मिले थे, लेकिन ऊंचा था उससे ज्यादा और एम्बिशियस बना हुआ था वो। तो जब देखा उसने कि भाई उसको उसके सारे एम्बिशियस पूरी नहीं कर रहा है, तो उसको उसने रिवॉल्वर लेकर गोली मार दी, उसको खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, भाई तो मरी गया, ये खुद जेल में पड़ा हुआ है, जो कुछ मिला था वो भी गायब, तो भी खत्म। उसका भाई जो जिसने किल किया आपने, जिसने मर्डर किया आपने भाई का, तो अब वो जेल में पड़ा हुआ है। अगर वो अपने इमोशंस को मैनेज करता, जो इमोशनल थॉट आ रहे थे उसके माइंड में, उसको मैनेज करता, तो आज कितना कामयाब होता वो। उसने खुद भी काफी फायदे उठाए, वो भी तो एक मामूली टीचर ही का बेटा था, लेकिन वो बॉम्बे में उसका भी एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अगरचे भाई से कम था, लेकिन धीरे 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 वो ही बढ़ जाता। हो सकता है कि फ्यूचर में वो भाई से भी ज्यादा हो जाता, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाता। वो तो एक प्रोसेस चल रहा था उसके लिए भी तरक्की का, एक प्रोसेस। अब वो चाहता था जल्दी से मैं उसके बराबर हो जाऊं, अब उसको मार डाला उसने, मार डाला तो अब क्या है। आजकल के जो लीगल सिस्टम है उसमें सबसे बुरा क्राइम होता है किसी को मार डालना, मर्डर सबसे बुरा क्राइम आजकल के लीगल सिस्टम में मर्डर है। कुछ भी दूसरा काम करें वो छोटा क्राइम है। कोई भी आप सोचिए जो काम, कोई भी क्रिमिनल एक्ट, हर क्रिमिनल एक्ट जो है इससे कम है, सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट जो है वो मर्डर है। अब बताइए कि अपने इमोशनल थॉट को मैनेज न करने की वजह से उसने एक ऐसा काम कर डाला जो सुपर क्राइम था, वो जिसे छूट नहीं सकता, बच नहीं सकता उससे। अब पड़ा हुआ जेल में, पड़ा रहेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब छूटेगा कभी तो बूढ़ा हो चुका होगा, एम्बिशन खत्म हो चुके होंगे। तो आदमी के देखिए, आदमी रोजाना आदमी फेस करता है अपने यानी अपने ख्यालात को। हर दिन ऐसा होता है, कभी आदमी के अंदर लस्ट आ गया, कभी एनवी आ गई, कभी गुस्सा आ गया, कभी रिवेंज आ गया, कभी ओवर एम्बिशियस हो गया, कभी दाव को ओवर एस्टिमेट करने लगा, अच्छा लग जाने की स्कीम बना ली उसने। यानी हर दिन ऐसा होता है कि उसके माइंड में ऐसे थॉट आते हैं जो उसको यानी अनरियलिस्टिक अप्रोच आ जाता है उसके अंदर। ऐसे एक्शन लेता है वो, ऐसे स्टेप लेता है जो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो। ये सब का केस है। यहां तक कि जॉर्ज बुश ने भी जो बॉम्बार्डमेंट किया इराक में, वही मैं सोचता हूँ उसे वो अपने थॉट को मैनेज नहीं कर सके। उसी को अब वो मैनेज कर रहे हैं ईरान के मामले में। जो बोली बोलता है ईरान का लीडर, वही बोली बोलता है सद्दाम, कि अमेरिका जो है सैटन है, अमेरिका को वाइप आउट कर दो, अमेरिका को मिटा दो, अमेरिका यह है, अमेरिका वो है, इस्लाम को दुश्मन है। ये बोली बोलता है ईरान का लीडर, सेम बोली बोलता था सद्दाम हुसैन, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके जॉर्ज बुश ने बॉम्बार्डमेंट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने जाके इराक को, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। अब जो लोग हैं वो गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, हर दिन वहां पर अमेरिकन को वो किल कर रहे हैं। जो अमेरिकन वहां है, अमेरिका के मिलिट्री या अमेरिका के स्टाफ, उनको एम्बुश करते हैं, वो बम मारते हैं, इधर बम उधर बम। तो आज तक अमेरिका जो है इराक में नॉर्मल से नहीं रह सका। इसीलिए अब जो है मामला ईरान से चल रहा है उसका, वैसे इशू है यहां पर भी, लेकिन अमेरिका ने यहां अपने आप को मैनेज किया। अगर मैनेज न करता तो अमेरिका जो है ईरान पर बम्बार्डमेंट कर देता और फिर फंस जाता उस तरीके से। तो चाहे कोई भी हो, चाहे सुपर पावर हो या एक इंडिविजुअल हो, एक पुअर आदमी हो या एक रिच आदमी हो, हर एक को अपने थॉट को मैनेज करना पड़ता है। जो अपने थॉट को मैनेज नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा इस दुनिया में, वो फेल हो जाएगा। आप अगर पढ़े प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की लाइफ, मैंने 3 किताबें लिखी है प्रॉफिट के ऊपर, पैगंबर इनकलाब, مطالعہ سیرت اور سیرت رسول، آپ ان دونوں کتابوں کو پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں سب سے بڑا ایگزامپل جو ہے تھاٹ مینجمنٹ کا وہ پرافٹ آف اسلام کا ہے، سب سے بڑا ایگزامپل. قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیر از اے گڈ ایگزامپل فار یو ان دا لائف آف دا پرافٹ. تو گڈ ایگزامپل کیا ہے؟ گڈ ایگزامپل یہی کہ پرافٹ جو تھے اپنے 23 سال کی زندگی میں انہوں نے بہت بڑا اچیومنٹ کیا جو ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. 23 سال کی زندگی میں پورا عرب جو ہے وہ کیپچر ہو گیا. ایک شخص کھڑا ہوا 610 عیسوی میں، 632 عیسوی میں پورا عرب اس کے اس کا وہ رول ہو چکا تھا. آپ سوچئے کہ 610 عیسوی میں ایک اکیلا ایک انسان کھڑا ہوتا ہے ایک بچے لے کر کے، خدا ایک ہے. اور 632 عیسوی میں جو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پورے عرب کو اسلام آباد کر چکا ہوتا ہے وہ. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس کو سمجھے نہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں ہر چیز کو میریکل کے ٹرم میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، رسول اللہ چلتے تھے ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ یہ سایہ ہو یا نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ سایہ ہو یا نہ ہو اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ رسول اللہ جو ہے غیب باتوں کو جانتے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا، اس میں کیا ہونا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو غیب کی باتوں کو جانتے تھے. اور رسول اللہ جو عبد الانبیاء تھے، رسول اللہ نہ ہوتے تو یہ یونیورس نہ بنایا جاتا. وجہ تقریب کائنات کہتے ہیں مسلمان، کہ رسول اللہ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، زمین نہ بنتی، آسمان نہ بنتی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مسٹیریس باتیں ہیں، مسٹیریس باتیں ہیں. کہ رسول اللہ جب پہ ہوتے تو یہ جو پیڑ ہے ٹری وہ اچھل کود کر آتا تھا آپ کو سلام کرنے کے لیے. کیا مطلب اس کا ہے؟ جہاں کھڑے ہوتے تھے آپ کو تو پیڑ آتا تھا، جھکتا تھا اور سلام کر کے پھر لوٹ جاتا تھا. یہ سب اسٹوپڈ باتیں. اسی پر اس سینس میں کہ جو آدمی نان مسلم یا ایجوکیٹڈ مسلمان، وہ مسلمان جو ماڈرن ایجوکیشن ہوئی ہے اور سائنٹیفک ٹیمپر سوچتے ہیں وہ، اور نان مسلم، دونوں کو اس سے کیا کیا ملے گا؟ اس سے ان باتوں سے انہیں کیا ملے گا؟ لیکن ہم نے جو دکھایا ہے تو ہماری کتابیں پڑھ کر کے لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. ہم نے یہ بات دکھائی ہے. آج کی دنیا کو اگر یہ بتا سکے آپ کہ تھاٹ مینجمنٹ زندگی کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور تھاٹ مینجمنٹ کا سب سے زیادہ سکسیسفل ایگزامپل جو ہے وہ پرافٹ آف اسلام کی زندگی میں ہے، تو سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. کیونکہ اس پرابلم میں سب پڑے ہوئے ہیں، یہ پرابلم سب کا پرابلم ہے. اب مسلمان یہ سب کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جا کر قبر میں مدینہ میں سلام کریں تو ڈائریکٹ وہ جواب دیتے ہیں آپ کو، آپ کہیں السلام علیکم ایھا النبی، رسول اللہ کہ علیکم السلام ڈائریکٹ. اور یہاں آپ کہیں السلام علیکم ایھا النبی تو بہت سارے انجل ہیں وہ لے کر دوڑتے ہیں. یہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں، سارے مسلمان. یہاں اگر آپ کہیں کہ السلام علیکم یا ایھا النبی تو انجل لے کر دوڑے گا، ارے بھائی فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا ہے. تو وہاں آپ کہیں گے ان کو میرا سلام پہنچا دو. یہاں کہیں تو انجل پہنچاتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہم مدینہ میں بولے تو خود سنتے ہیں وہ. کسی کسی کا لینا دینا ایک انسان کو؟ یہ تو ایک میجک ہے، ایک مسٹیریس بات ہے. آج کا ماڈرن انسان، آج کا سائنٹیفک مائنڈ، آج کا ریشنل ڈھنگ پر سوچنے والا انسان اس سے کیوں متاثر ہوگا؟ کیوں اس سے امپریس ہوگا؟ اس کو کہا بھائی یہ تو کچھ جادوگر تھا شاید، وہ کچھ مسٹیریس باتیں کرتے تھے، ہمیں اس سے کیا ملنے والا ہے؟ لیکن اگر ایک انسان پیدا ہو جو ایز اے پرسن وہ میریکل کرتا رہے، سورج کو روک دے اور چاند کو اتار لے اور سمندر کو سکھا دے، तो इंसान सोचेगा कि भाई ये उनका अपना कमाल था, मुझे क्या मिला। याद इसको समझ लीजिए आपको कि मुझे मिलना चाहिए। जब आदमी पढ़ेगा प्रॉफिट की लाइफ को तो वो सोचेगा कि मुझे इनकी जिंदगी से क्या मिलता है, मुझे क्या मिला। अगर आप ये कहें कि वो तो तार से लंबे थे, वो तो चांद को हाथ पकड़ उतार लेते थे, वो सारे समुद्र को पी जाते थे, मतलब इस तरह की मिरेकुलस बातें करें आप, तो उसको उसको कुछ भी नहीं, उसका माइंड एड्रेस नहीं होगा, उसका माइंड एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं बैठा जानने के लिए कि आपके प्रॉफिट जो है क्या क्या मिरेकुलस क्वालिटी उनके अंदर थी, ये उसका कंसर्न नहीं है। मॉडर्न माइंड जो है उसका ये कंसर्न नहीं है कि वो जाने कि आपके प्रॉफिट में क्या क्या मिरेकुलस क्वालिटीज थी, क्या क्या मैजिकल क्वालिटीज थी, क्या क्या मिस्टीरियस क्वालिटीज थी, ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका इसका सोचता ही नहीं है। वो सोचता है कि मेरी जो जिंदगी है वो कैसे मैं मैनेज करूं, अभी मेरी जिंदगी है उसको मैं कैसे सक्सेसफुल बनाऊं। तो अगर आप इस तरह से प्रॉफिट को पेश करें कि वो कि थॉट मैनेजमेंट सबसे बड़ी साइंस है और थॉट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे प्रॉफिट, और थॉट मैनेजमेंट करके उन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की, तो वो तो एकदम उसका माइंड एड्रेस हो जाएगा, ये तो जानना चाहता है वो, लेकिन लोग बता नहीं पाते। अब देखिए एक बुक छपी है द 100 अमरीका से, उसका ऑथर है डॉक्टर माइकल हार्ट, HART, डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने लिखी है द 100। इसमें हिस्ट्री के 100 आदमियों को लिया है उसने और दिखाया है कि उनकी ग्रेडिंग की है कि सबसे बड़ा अचीवर कौन था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवर बनाया उसने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को कि सबसे बड़ी सक्सेस आपको मिली। तो वो लिखता है कि मोहम्मद वॉज द ओनली पर्सन इन हिस्ट्री हु वॉज मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन बोथ द सेकुलर एंड रिलीजियस लेवल, ऐसा कुछ वर्डिंग है उसकी, कि मोहम्मद पूरी हिस्ट्री के वो इंसान थे जिन्होंने मजहबी और सेकुलर दोनों पहलुओं से सबसे बड़ी सक्सेस हासिल की। ये तो उसे लिख दिया, लेकिन what was the secret of the success, ये किताब में नहीं है। यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो है पूरी हिस्ट्री के सबसे बड़े सक्सेसफुल इंसान थे, द 100 में उसने दिखाया, नंबर 1 पर रखा उसने रसूलुल्लाह को। लेकिन उस किताब में ये आप नहीं पाएंगे कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, ये आप हमारी किताब में पा सकते हैं। हमें न्यूज में आप पाएंगे कि थॉट मैनेजमेंट, अपने जज्बात को कंट्रोल करना, अपने माइंड में जो तरह तरह की बातें आती हैं उसको जानना, उसको एनालिसिस करके उसको सही तौर पर लेना। जैसे आपकी एक दुआ है कि अल्लाहुम अरिनल अशिया कमा है, ओ गॉड मुझे चीजों को एज इट इज दिखा, बास थिंकिंग मेरे अंदर न हो, कॉम्प्लेक्स फ्री सोल हो मेरे अंदर, मैं चीजों को वैसे ही देखूं जैसा कि चीजें हैं। तो जब आदमी के अंदर ये बात होगी तभी तो वो मैनेज कर सकेगा अपने नेगेटिव थॉट को। आदमी बहुत जल्द देखिए नेगेटिव थॉट का विक्टिम बन जाता है, ये आम है बिल्कुल, इंडिविजुअल कोई हो या कोई सोसाइटी हो। जैसे इंडिया में देखिए मुसलमान जो है, इंडिया का सारी दुनिया मुसलमान, वो विक्टिम बने हुए हैं नेगेटिव थॉट का, सारे मुसलमान नेगेटिव थॉट में जीते हैं। नेगेटिव थॉट क्यों? तो सोचते हैं कि साहब ये ब्रिटिशर्स ने हमारी मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया और ये जिस लोगों ने अमेरिका के एड से पैलेस्टाइन में ऑक्यूपाई कर लिया और इन्होंने बम्बार्डमेंट कर दिया अफगानिस्तान पर, इन सब चीजों को लेकर के सारे मुसलमान जो है वो नेगेटिव बन गए। तो हम यहाँ कहते हैं कि जिंदगी में ये सब प्रॉब्लम आते ही आते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम है। लोग मुसलमान क्या मुसलमान के पास क्या टर्म है, वो है कॉन्स्पिरेसी, जुल्म, एट्रोसिटी, ये सब है, सब कहते गलत है। जिंदगी नाम है चैलेंज का, जिंदगी नाम है कॉम्पिटिशन का। तो यहाँ हर आदमी अपने इंटरेस्ट के पीछे दौड़ता है कि इराक के पास चूंकि ऑयल है तो अमेरिका को ऑयल चाहिए, तो दौड़ा हुआ ऑयल पर कब्जा करो। तो हम यहाँ कहेंगे यू हैव टू मैनेज दैट प्रॉब्लम। मैनेज कैसे, आप वही कीजिए सऊदी अरब में किया, सऊदी अरब के पास ऑयल है इराक से भी ज्यादा, सऊदी अरब का आगे ठीक है भाई आओ हमारे ऑयल को तुम एक्सप्लोर करो और यहाँ रिफाइनरी लगाओ और ऑयल इंडस्ट्री बनाओ, हमें रॉयल्टी दो, तुम तेल ले जाओ और रॉयल्टी हमको देते रहो। अब इतनी बड़ी रॉयल्टी मिलती है सऊदी अरब को कि शायद दुनिया के मुसलमानों को मदद करता है वो, यानी उसको सऊदी अरब को उसने डेवलप किया और दुनिया भर के मुसलमानों को हर बच्चे को हर मदरसे को हर इंस्टीट्यूशन को मदद करता है वो। तो उसने मैनेज किया कि अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब का जो ऑयल है उस पर उसका कंट्रोल हो, तो लड़ा नहीं सऊदी अरब, लड़ा नहीं, ठीक है कंट्रोल कर लो तुम हमें रॉयल्टी दो। तो बहुत भारी रॉयल्टी लेता है सऊदी अरब अमरीका से और उस वजह से वो दुनिया भर में इस्लामिक एक्टिविटीज को मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को मदद करता है और सऊदी अरब को उसने बहुत ही डेवलप कर रखा है। तो इराक में ही करता, यह है मैनेज करना। तो सद्दाम हुसैन ने मैनेज नहीं किया, मैंने क्या अमेरिका से लगा उसको चैलेंज करने कि तुम्हारी कुछ ऐसे नहीं, हम तुमको मिटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अमेरिका ने उसको मिटा दिया। तो सऊदी आप इसलिए देख सकते हैं कंपेयर करके कि सेम प्रॉब्लम जो है इराक को भी था और सेम प्रॉब्लम सऊदी गवर्नमेंट को भी था, सऊदी अरब को भी था। तो सऊदी अरब ने उसको मैनेज किया तो वो सक्सेस मिली उसको, इराक बने नहीं कर सका तो वो डिस्ट्रॉय होगा। तो लाइफ जो है फुल ऑफ प्रॉब्लम है, यू हैव टू मैनेज दैट प्रॉब्लम, यू हैव नो द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम कहां आते हैं, सबसे पहले माइंड में आते हैं, थॉट के रूप में आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि थॉट मैनेजमेंट जो है वो जानना चाहिए। तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो थे, थॉट मैनेजमेंट उनका पावर एक्सला है, पावर एक्सला है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही जबरदस्त मिसाल। अभी देखिए, कल मैंने एक किस्सा बताया था मौलाना का, 1993 में उन्हें बुलाया गया अमेरिका शिकागो में, वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सारे मजहबों की। तो शिकागो में सारे रिलीजन के लोग इकट्ठा थे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इनको बुलाया गया इस्लाम क्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस्लाम क्या है बताने के लिए। अब वहां जब पहुंचे तो हिंदू लोग कुछ अपना हिंदू का जो स्पीकर बोलने वाला था, तो उससे पहले 2-4 मिनट वो क्या करते हैं, भजन गाते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अब वहां ये हो रहा था, उन्हें माने कि 24 घंटे ये हो रहा था, हिंदू स्पीकर के बोलने से पहले 2 मिनट जो है भजन करते हैं वो, मंत्र पढ़ते हैं संस्कृत का। अब जो अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ तो जुलमत है, जुलमत है, जुलमत मीन्स डार्कनेस, यानी वो भजन और मंत्र जो था उसको उन्हें जुलमत के रूप में देखा, डार्कनेस मतलब हिंदू डार्कनेस या शिर्क की डार्कनेस, और भागे वहां से। उन्हें बोले भी नहीं, स्पीच भी नहीं दिया उन्होंने, डार्कनेस को लेकर भागे। मानी नहीं की डार्कनेस जो थी, सपोज डार्कनेस थी दो मिनट की, तो उनके मन में नेगेटिव थॉट आए तो आप मैनेज करते उसको, ये मैनेज किस तरह करते, इतना बड़ा ऑडियंस मुझे कभी मिलने वाला नहीं है। वो तो सौ साल की हिस्ट्री थी, उस सौ साल की हिस्ट्री की वजह से वहां पर ऐसा हुआ था। 1893 में वहां पर एक शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके 100 साल के बाद ये की गई थी, तो ऐसा ऑडियंस जो था वहां पर कहीं नहीं मिलेगा। $1 बिलियन खर्च करूं मैं तब भी नहीं मिलने वाला है, तो मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करो भजन को। अब मैं आपको एक प्रॉफिट एग्जांपल देता हूं, काबा जो है मक्का में, आप जानते हैं कि 610 ईस्वी में प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बनाए गए। उस वक्त काबा जो था उसमें 360 आइडल थे, 360। आज तो काबा में कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त तो काबा में उनके लिए दो प्रॉब्लम था, वहां भजन भी था, भजन इस सेंस में कि कुरान में लिखा हुआ है कि वो मकान सलातुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्बीह, यानी काबा में जब आते हैं तो उनकी वर्शिप कैसे करते हैं, वो ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। जो हिंदू भजन करते हैं तो ऐसे वो लोग जब आते थे काबा में तो ताली बजाते थे, सीटी बजाते थे, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो अब दो प्रॉब्लम था, एक तो भजन का प्रोग्राम और दूसरा काबा में 360 बुत होने का प्रॉब्लम। अब इससे जाहिर है कि उनके अंदर नेगेटिव थॉट आता होगा कि यहाँ पर क्या मुसीबत है यहाँ पर। लेकिन आपने क्या सोचा कि काबा जो है वो हजारों साल से वहां पर था, उसकी हिस्ट्री थी बहुत लंबी चौड़ी, वो एक सेक्रेट जगह बनी हुई थी, इस वजह से वहां पर डेली असेंबली होती थी, लोग आते थे वहां पर जमा होते थे। अब वो असेंबली जो होती थी वहां पर, आपने सोचा कि ऐसी असेंबली मुझे कहीं मिलने वाली नहीं है, अगर मैं चाहूं कि मेरे घर पर लोग आ जाए तो वहां मैं उन्हें बात बताऊं इस्लाम की, तो मेरे घर पर कौन आएगा, मेरे घर पर तो कोई नहीं आएगा, वो तो आएंगे तो यहाँ आएंगे। अगर से वहां पर था प्रॉब्लम बुध का और भजन का, डबल प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉफिट ने क्या फार्मूला अपनाया, ही इग्नोर द प्रॉब्लम एंड ही अवेल द अपॉर्चुनिटी। आपने प्रॉब्लम को इग्नोर किया और जो अपॉर्चुनिटी थी उसका अवेल किया, और डेली जाकर एड्रेस करते थे वहां पर, वहां जाकर के आप कुरान की जो वर्सेस उतरती थी लोग सुनाते थे। तो अब मौलाना जो है इतना बड़ा चांस मिला उनको कि दुनिया भर के हर मजहब के लोग इकट्ठा है, वहां उनको इस्लाम की बात बताने बताया, दुनिया के सारे लोग सुनेंगे। मॉडर्न जो एड्रेस सिस्टम है, मॉडर्न जो टेक्निक है, तो वो छपता हर जगह, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन सिर्फ भजन के वजह से भागे वहां से वो, यानी एड्रेस ही नहीं किया उन्होंने, कार्य पर जाता है, जुल्म है, जुल्मत है, डार्कनेस है, ये जुल्मत मीन्स डार्कनेस। तो रसूलुल्लाह को भी सुपर डार्कनेस थी वहां पर। आप सोचिए कि मक्का में जो काबा था वहां तो सुपर डार्कनेस थी, तो आप बुद्ध थे और वहां शोर भी करते थे वो सब। खुद कुरान में लिखा हुआ है कि आकर ताली बजाते थे और सीढ़ी बजाते थे, वो ये उनकी वर्शिप थी। तो प्रॉफिट ने देखिए किस तरह से थॉट मैनेजमेंट किया, प्रॉब्लम को इग्नोर किया और अपॉर्चुनिटी का अवेल किया। अब ये सब बातें अगर बताई जाए लोग हैरान रह जाएंगे कि प्रॉफिट की जिंदगी में ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं। लेकिन जो बुक लिखी जाती है उसमें वही सब रहता है कि प्रॉफिट का साया नहीं होता था, तो यहां उनकी वजह से सूरज रुक गया, क्योंकि सूर्य मगरिब असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, है शाम हो गई थी तो मगरिब टाइम आ गया था, तो खुदा ने कहा कि सूरज लौटा दो पीछे ताकि असर की नमाज पढ़ सके। बिल्कुल फजूल बातें हैं। आज का इंसान कुछ से क्या मिलेगा मुझे बताइए, आज का इंसान का माइंड एड्रेस नहीं होगा। आज का इंसान समझता है कि सोलर एनर्जी को कैसे हम कंट्रोल करें, आप ये बताइए उसको। इन सूरज लौट गया तो इससे आज का इंसान का माइंड एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो फंसा हुआ इसमें कि मुझे सोलर एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, क्योंकि एनर्जी का जो भंडार मेरा है वो खत्म हो रहा है, या मुझे बताओ कि मरने के बाद खुदा क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड क्या है वो बताओ, मरने के बाद क्या है वो बताओ, लाइफ की फिलॉसफी बताओ। तो आज का माइंड उन बातों से एड्रेस ही नहीं होता जिसको लेकर मुसलमान आज दुनिया में लिखते हुए बोलते हैं। हालांकि अगर वो बातें कही जाए जो जो रियल पार्ट है प्रॉफिट की लाइफ का, रियल पार्ट जिसमें कि थॉट मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम को इग्नोर करके अपॉर्चुनिटी का अवेल करना है वगैरह वगैरह, तो आज के इंसान जो है वो उसका माइंड एड्रेस होगा, वो सोचता है भाई यही तो हम चाहते थे, ये हमें मिल नहीं रहा था, ये हमें मिल नहीं रहा था, कोई हमें ऐसी बुक हमारे पास नहीं थी, कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हमारे पास नहीं थी, रिलीजन जितना है सब वो मैथोलॉजी बन चुका है, हम दूसरे रिलीजन से मैथोलॉजी मिलती है, हमें हिस्ट्री नहीं मिलती। प्रॉफिट की लाइफ है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, और दूसरे जितने भी हैं वो सब क्या है, मैथोलॉजी, मैथोलॉजी यानी हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी उन्हें नहीं मिली हुई है। जितने भी दिलचस्प पेशवा है, जितने भी पिछले जमाने के प्रॉफिट है, जितने भी इनको अवतार मानते हैं लोग या जो भी, सब के सब जो है उनका मामला यह है कि उनको हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी मिली हुई नहीं, और प्रॉफिट अकेला है, अकेले हैं इस मामले में कि आपकी पूरी लाइफ जो है हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी उसको मिली हुई है। तो आप सोचिए कि अगर हम बता सकें कि यह है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, तो इंसान कितना ज्यादा उसे अट्रैक्ट होगा है? अगर हम बता सकें कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ये है, उनकी लाइफ ये है, उन्होंने ये चीज दी है, यानी वो चीज जो बुश को इसका पता नहीं है, जिस गांधी नेहरू को इसका पता नहीं है, वो चीज मिली है, मिलती है हमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के यहाँ। ये थॉट मैनेजमेंट, जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल बताया आपको कि थॉट मैनेजमेंट का जो आर्ट है, जो साइंस है, वो कोई जानते ही नहीं, जो कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का पार एक्सलाम मौजूद है। तो यह है काम जो मुसलमानों को करना है। मुसलमान जो झूठा के कार्टून छप गया उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कार्टून मारो उसको, सारी दुनिया के मुसलमान एक कार्टून के लिए हंगामा खड़ा कर दिया, रोड पर आ गए, दुनिया पर मुझको अकेला एक इंसान था, मैं इससे अलग रहा, सारे ही मुसलमान झंडा उठा लिया उन्होंने, कार्टून को मारो, कार्टून को खत्म करो, कार्टून जो है हमारे पैगंबर को गुस्ताखी की है, ये क्या ये कोई काम है, ये कोई काम है, ये इस्लाम को तो रिडिक्यूल करना है। मैं समझता हूँ कि ये लोग इस्लाम का तबलीग नहीं कर रहे हैं, इस्लाम को रिडिक्यूल कर रहे हैं, इस्लाम को एक वो बना रहे हैं, जो कहते हैं वो लाफिंग स्टॉक, इस्लाम को लाफिंग स्टॉक बना रहे हैं कि क्या भी एक कार्टून छप गया तो सारा एडिफिस का ढप पड़ा, इस्लाम का कैसा इस्लाम का एडिफिस है कि डेनमार्क के एक अननोन पेपर में, जिसको कोई 400 लोग पढ़ते होंगे, उसमें एक कार्टून छप गया तो इस्लाम का एडिफिस डिमोलिश हो गया। ऐसे इस्लाम आदमी की जरूरत ही क्या भाई, जो इस्लाम में कमजोर हो, जो इस्लाम में वीक हो। तो मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल रिडिकुलस काम है, असल काम करना है उसको कोई कर नहीं रहा। बारह यही काम करना है, खुद भी यही काम करना है, दूसरों को यही काम बताना है, खुद भी यही काम करना है और दूसरों को भी यही काम बताना है। और इस काम को जो लेकर उठेगा तो उसको खुदा की सुपर ब्लेसिंग मिलेगी, सुपर हेल्प मिलेगी, सारे एंजल उसके लिए आ जाएंगे उसकी हेल्प के लिए। इतना बड़ा काम है।